पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 11, महाराष्ट्र की गुरव परंपरा एवं मंगल वेढ़ेकर घराना। भारतीय संगीत के प्रति महाराष्ट्र का योगदान सदा से बहुमूल्य रहा है। काव्य, नाट्य और संगीत जैसे कलात्मक क्षेत्रों में वहाँ के कलाकारों का अपना विशेष स्थान प्राचीन काल से ही रहा है। कर्पूर मंजरी, साहित्य दर्पण इत्यादि अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों में महाराष्ट्रीय कलाकारों की गौरव गाथा का वर्णन हमें मिलता है। देवाश्रय तथा राजाश्रय में संगीत का विकास। भारत के संगीत के इतिहास में 13वीं शताब्दी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यादव वंश के राजाओं ने संगीत को सदैव प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप संगीत रत्नाकर जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना सारंगदेव ने की, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे एवं देवगिरी दौलताबाद के निवासी थे। भारत के नाट्यशास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर को ही संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है। भारत का संगीत सिद्धांत के पृष्ठ 303 पर आचार्य बृहस्पति ने लिखा है कि सिंह भूपाल 14वीं सदी का कथन है कि आचार्य सारंगदेव से पूर्व समस्त संगीत पद्धति बिखर गई थी, जिसे अस्पष्ट रूप से सारंगदेव ने संजो दिया। आचार्य सारंगदेव ने अनेक मतों का मंथन करके अपनी अमृत कृति संगीत रत्नाकर का प्रणयन किया, जो उपलब्ध संगीत ग्रंथों का मुकुट है। मुस्लिम युग के बाद मुगल युग में महाराष्ट्र के लोक जीवन पर संतों का प्रभाव बराबर बना रहा। महाराष्ट्र के संतों ने सदैव संगीत के माध्यम को अपनाया है। संत रामदास, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत दासोपंत, संत गणेशनाथ, संत तुकाराम इत्यादि भक्तों ने तथा वाडकरी संप्रदाय जैसे भक्ति संप्रदायों ने संगीत के द्वारा प्रभु को रिझाने का प्रयत्न किया था। संत नामदेव कहते थे, ज्ञान से भक्ति का मार्ग अधिक सरल है और संगीत के बिना भक्ति संभव नहीं है। मेरे प्रभु को गाना बजाना पसंद है, अतः मैं उसे संगीत से रिझाना चाहता हूँ। इससे जनता में भक्तिपूर्ण संगीत के प्रति आदर भावना उत्पन्न हो सकी थी। संगीत में मनुष्य को ऊपर उठाने की क्षमता है तथा वह मोक्ष प्राप्ति का सरलतम साधन है। पृष्ठ संख्या 84। इस महत्वपूर्ण तथ्य से जनता को परिचित करवाकर महाराष्ट्रीय संतों ने उचित पथ निर्देशित किया, जिससे जन साधारण में संगीत को आदर मान तो मिला ही, समाज में स्फूर्ति, चेतना और भक्ति का वातावरण भी फैल गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना, एक सूत्रता, आत्मशुद्धि तथा जिंदा दिली की भावना पनप उठी। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि महाराष्ट्र का भक्ति संगीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित रहा है, अतः शुद्ध संगीत का प्रचार जन समाज में छाया रहा। यह तो देवाश्रय की बात हुई। राजाश्रय में भी महाराष्ट्र की सांगीतिक परिस्थिति पर शुद्ध शास्त्रीय संगीत का ही बोलबाला रहा, जिसका मुख्य श्रेय बीजापुर की आदिलशाही और वहाँ के कला प्रेमी राजाओं की कला परस्ती को जाता है। 14वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के साथ महाराष्ट्र का सांगीतिक संबंध मुख्यतः बीजापुर की आदिलशाही का प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्रीय राजाओं के दरबार में शास्त्रीय गायन वादन को प्रधानता मिल सकी। यही कारण है कि जिन दिनों उत्तर भारत में राजकीय परिस्थिति अस्थिर और अशोभनीय हो गई थी तथा राजा और प्रजा विलासिता के वशीभूत हो चुके थे, वहाँ महाराष्ट्र प्रांत में संगीत का शुद्ध एवं भक्तिमय रूप प्रचलित था। मराठी जनता ने अपनी भक्ति परायणता से शास्त्रीय संगीत के गहन रूप को सदैव शुद्ध रखने का प्रयत्न किया। हिंदू संस्कृति का प्रभाव हमें वहाँ अधिक देखने को मिलता है। वहाँ के कलाकारों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में कम और कला के रूप में अधिक महत्व दिया। अतः वहाँ के समाज में संगीतज्ञों का उच्च स्थान था। फलतः जीवन और संगीत के बीच उत्तर भारत में जो फासला दिखाई देता था वह वहाँ नहीं था। महाराष्ट्रीय जनता ने संगीत को विद्या और संस्कृति का आवश्यक माध्यम ही समझा था, पेशा नहीं। इन महाराष्ट्र म्यूजिक वाज एन इंस्परेबल पार्ट ऑफ द स्टडी। मुगल तथा मराठा काल में महाराष्ट्र में राग रागनियों की साधना अधिकतर हुआ करती थी। ठुमरी, कव्वाली और गजल का प्रभाव बहुत कम था। सार्वजनिक उत्सवों में सितार के स्थान पर वीणा और तबले के स्थान पर मृदंग का प्रयोग ही अधिक देखने को मिलता था। वैसे जन साधारण के जीवन में पवाड़ा, भावगीत जैसे लोकगीत तथा लावणी, बौरी जैसे लोक नृत्य का भी प्रचलन था। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उत्सव में गायन, वादन तथा नृत्य का कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलता रहा, ऐसा उल्लेख कई स्थानों पर उपलब्ध है। पेशवाओं के दरबार में भी संगीत और संगीतकारों का आदर था। प्रोफेसर जी एच रानाडे लिखते हैं, सुप्रसिद्ध ईरानी विद्वान अकीमर ने मराठा काल के संगीत की शिल्पज्ञता के लिए जो कुछ कहा है उसकी चर्चा करते हुए श्री उमेश जोशी भारतीय संगीत के इतिहास में लिखते हैं, मराठा काल के संगीत की शिल्पज्ञता की उच्चता की समानता उस काल का यूरोपीय संगीत भी नहीं कह सकता। अतएव उस युग में महाराष्ट्र में भारतीय संगीत गौरव एवं कीर्ति के शिखर पर विराजमान था। पृष्ठ संख्या 85। कोल्हापुर, सांगली, सतारा, मिरज, औंध आदि महाराष्ट्रीय राज्यों में तथा महाराष्ट्र के 12 बाहर ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, धार जैसे राजदरबारों में महाराष्ट्रीय राजाओं ने संगीत का बड़ा सम्मान किया तथा गुणी संगीतकारों को राजाश्रय देकर अपने राज दरबारों को गौरवान्वित किया था। गुरव परंपरा। हम देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में भक्तिमय संगीत का महत्व रहा है। देव के आश्रय में जिस जाति विशेष ने पुरातन काल से महाराष्ट्र में पखावज और ध्रुपद गायकी का बड़े प्यार और जतन से लालन पालन किया, जिसने वंश परंपरागत उसे सीखा और संभाला, जिसने अपनी दीर्घ साधना से उसे संवारा और जनसाधारण में सम्मान दिलवाया, वह जाति महाराष्ट्र में गुरव नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की सेवा और भगवान की पूजा के साथ भजन कीर्तन, ध्रुपद गायन और पखावज वादन द्वारा अपने इष्ट देव देवियों को रिझाने की परंपरा उनमें सदियों से चली आ रही है। आज भी महाराष्ट्र के छोटे बड़े गांवों और शहरों के गुरव परिवारों में हमें वंश परंपरागत संगीत साधना देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में जो कुछ थोड़ा बहुत पखावज आज जीवित रह सका है, इसके पीछे गुरव परंपरा का योगदान मुख्य है। वैसे देखा जाए तो हमें पखावज के विविध घरानों का क्रमबद्ध इतिहास 17वीं शताब्दी के अंत से तथा 18वीं शताब्दी के आरंभ काल से प्रारंभ होता है। यद्यपि अकबर के युग के पखावज वादकों की कुछ जानकारी उपलब्ध हो सकी, और वह भी क्रमबद्ध इतिहास के रूप में नहीं, उसी प्रकार ब्रज की परंपरा भी बहुत प्राचीन है तथा जयपुर घराने के कुछ कलाकारों का इतिहास तो 300 वर्ष से अधिक पुराना लगता है। गुरव परंपरा तो सदियों पुरानी है, किंतु इनमें से किसी भी परंपरा का क्रमबद्ध विकास प्राप्त नहीं होता। गुरव परिवारों में पखावज वादन की परंपरा कैसे आरंभ हुई, उसके आदि संस्थापक कौन थे, किस घराने से परंपरा संबंधित थे, आदि बातें सर्वथा अज्ञात हैं। पृष्ठ संख्या 86। इस तथ्य को जानने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया। गुरव परिवारों के गुणी और वयोवृद्ध कलाकारों से भेंट की गई, उनसे प्रश्नोत्तर किए गए, किंतु इस विषय में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। उनमें से बहुतों का कहना था कि हमने तो अपने बाप दादाओं से यह विद्या सीखी है जो उनको देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त हुई है। संभव है कि संगीत विद्या उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली हो और देवी देवताओं की कृपा से उनके वंश में फूली फली हो, किंतु निःसंदेह किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही उसका प्रचार हुआ होगा। उनके कोई न कोई गुरु रहे होंगे, कहीं किसी विद्वान से उनके आदि पुरुषों ने सीखा होगा। बिना सीखे मृदंग वाद पखावत जैसी कठिन विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है। खेद की बात है कि हमारे पास इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है, अतः हमें मौखिक बातों पर तथा कहीं किसी पुस्तक में लिखी गई अल्प सी सामग्री पर आधार रखना पड़ता है। गुरव परंपरा में बहुत से गुणी एवं विद्वान कलाकार हो गए हैं, उनका उल्लेख क्रमशः इतिहास के रूप में न सही व्यक्तिगत रूप में कहीं किसी पुस्तक में मिल ही जाता है, जिनकी संक्षेप में चर्चा आवश्यक है। श्रीमंत नाना साहब पेशवाई दरबार के मृदंग वादक श्री धर्मा गुरव का उल्लेख मिलता है, जो अत्यंत गुणी तथा कला जगत में सुप्रसिद्ध थे। बाजीराव पेशवा दूसरे के दरबार में श्री नागू गुरव तथा श्री देवीदास बहिरजी का आदरणीय स्थान था। पुणे के मान्याबा कोडितकर जिनसे सुप्रसिद्ध मृदंग केसरी नाना पानसे ने अपनी किशोरावस्था में विद्या प्राप्त की थी, गुरव परिवार के कलाकार थे। वाई के मार्तंड बुआ और चौंडे बुआ भी गुरव परिवार से संबंधित थे। कहा जाता है कि नाना पानसे ने अपने बाल्यकाल में चौंडे बुआ तथा मार्तंड बुआ से भी सीखा था। इंदौर के सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य पंडित सखाराम पंत आगले तथा उनके सुपुत्र पंडित अंबादास पंत आगले जाति के गुरव थे। पंडित सखाराम पंत ने पखावज की शिक्षा का आरंभ अपने पिताजी से ही किया था। बाद में उन्होंने इंदौर के नाना पानसे जी से सीखा। नाना पानसे जी के दोहित्र पंडित शंकर भैया पानसे के शिष्य पंडित सखाराम मृदंगाचार्य भी गुरव संप्रदाय से संबंधित थे। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई, तथापि उनकी कर्म भूमि लखनऊ रही। उनके पुत्र सदाशिव तथा पौत्र विनायक राव भी उनकी परंपरा में विशेष योग्यता रखते हैं। पृष्ठ संख्या 87। पुणे के पार्वती देवस्थान के नौकर ज्ञानबा राजूरीकर का नाम भी गुरव संप्रदाय में श्रद्धा से लिया जाता है। कुरुंदवाद के निवासी तथा मिरज में अत्यंत प्रसिद्ध राम भाव गुरव की रसमय संगत को आज भी लोग याद करते हैं। पुणे के मृदंगाचार्य शंकर भैया घोर पड़कर जाति के गुरव थे। वे नेरगांव के विट्ठल मंदिर तथा पुणे के प्रसिद्ध श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर के आजीवन सेवक रहे। उनके सुपुत्र बसंत राव घोर पड़कर आज भी पुणे के बागेश्वरी मंदिर से के सेवक हैं। पंढरपुर के सुप्रसिद्ध मंगल वेढेकर घराने के आदि पुरुष पंडित विट्ठलाचार्य जोशी मंगल वेढेकर जी मंगल बेढ़ा गांव के एक मंदिर के पुजारी थे। यमंगल वेढेकर घराने की यह विशेषता है कि उनकी वंश परंपरा का प्रत्येक कला निपुण व्यक्ति पखावज के साथ साथ वैदिक परंपरा में भी अपना अधिकार रखता है। अथणी के परशुराम गुरव जो कि जनार्दन पंत जोशी मंगल वेदेकर जी के शिष्य थे, उच्च कोटि के कलाकार हो गए। सतारा के तास गांव के रहने वाले धर्मा जी गुरव तथा उनके पुत्र रघुनाथ बुआ गुरव के नाम कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि सतारा के महाराजा श्रीमंत भाऊ साहब को धर्मा जी गुरव पखावज सिखाते थे। बाजी घनश्याम गुरव पर्वतकर गोवा के रहने वाले थे, जिनसे सुप्रसिद्ध तबला पटु श्री कामूराव मंगेशकर ने सीखा था। अहमदनगर निवासी तथा पानसे घराने के शिष्य केशव बुआ दीक्षित, उनके भाई नाथ बुआ दीक्षित तथा नाथ बुआ के सुपुत्र बाला साहेब दीक्षित वंश परंपरागत देव सेवा में समर्पित हैं। आज भी अहमदनगर के दत्त मंदिर में बाला साहेब दीक्षित सेवारत हैं। साथ ही साथ वे दत्त संगीत महाविद्यालय भी चलाते हैं। कीड़ गांव के भीखोबा गुरव और उनके सुपुत्र बापूराव गुरव अहमदनगर भी अपनी कला के सिद्ध हस्त कलाकार हैं। श्री गोंडू जी गुरव और श्री नारायण राव जी गुरव ग्वालियर के निवासी थे, जो पर्वत सिंह पखावजी के समकालीन थे। पृष्ठ संख्या 88। इंदौर के मुन्ना लाल पवार और चुन्नी पवार वहां के वैष्णव मंदिर के सेवक थे और जीवन के अंत समय तक देव सेवा में संलग्न थे। जलगांव के शंकर भैया गुरव महाराष्ट्रीय कीर्तनों की उत्तम संगत करते थे। वे नट सम्राट बाल गंधर्व के समकालीन एवं उनके मित्र थे। उनके पुत्र बाला भाऊ गुरव भी उच्च कोटि के कलाकार थे। पंडित गणपत राव गुरव जलगांव के रहने वाले थे, जो इसी संप्रदाय से संबंधित थे। बड़ोदरा के पंडित मधुकर गुरव भी गुरव संप्रदाय से संबंधित हैं, जो पंडित सुधीर कुमार सक्सेना के शिष्य हैं। इनके उपरांत दामू अन्ना गुरव श्री कृष्ण श्रीधर बालाजी वाले बुरहानपुर, जानकी राव गुरव धूले, लक्ष्मण राव मधुकर, कालू राम भीखा जी तथा सदाशिव गुरव सभी धूले निवासी। राघो जी गुरव कोपर गांव, पांडुरंग गुरव श्रीरामपुर, भानुदास गुरव तथा गणपत राव कवठेकर मिरज आदि के नाम गुरु संप्रदाय में उल्लेखनीय है।